आज स्वामी 22 तारीख को 22nd परसों स्वामी श्रद्धानंद जी का जयंती था। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद जी के बाद सेकेंड हाईएस्ट पर्सन थे आर्य समाज को बढ़ाने में, जिनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो व्यक्ति है जो सबसे पहले भारत में स्पेसिफिक गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में। पहली बार लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और गुरुकुल खोला। जो एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम है वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में इसको रिवाइव किया, नॉट ओनली फॉर बॉयज, जो महिलाओं को लेडीज को शास्त्र पढ़ने से, गायत्री मंत्र जपने से, वेदादि पढ़ने से रोका गया था, बैन था। उन्होंने स्पेसिफिक कन्या गुरुकुल लड़कियों के लिए गुरुकुल खोला जहां वो वेद पढ़ें, वेद की विदुषियां बने। नंबर 3, जो दूसरे दलित शोषित थे, डाउन ट्रोडन्स थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स चलाया। एंड द 4th, जो लोग फोर्सफुली या किसी कारण से दूसरे रिलीजन में चले गए थे, दे वांट टू कम बैक टू देयर मेन मदर रिलीजन, पर हिंदू धर्म में जो जिस तरह की हमारी सिस्टम है, पंडित लोग हैं, वो किसी को एक बार आप नए को तो लेते नहीं, जो दोबारा किसी तरह गलती से दूसरे रिलीजन में चला गया तो उसको भी वापस नहीं लेते थे। वो मूवमेंट भी चलाया कि जो कन्वर्टेड लोग हैं वो अगर वांट टू कम बैक तो उनको भी एक मूवमेंट चलाया। तो इस तरह का, और नॉट ओनली दैट, पॉलिटिकली भी वो बहुत एक्टिव रहे महात्मा गांधी के साथ। वो नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और अनेक सारे मूवमेंट चलाया। उनका जन्मदिन फरवरी 22 को हो, इस अवसर पर आप सबको, हम सब उनको नमन करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ईशोपनिषद की डिस्कशन में। हम पिछले बार ईशोपनिषद का 12 मंत्र की डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले जो 9, 10, 11 श्लोक हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था जो मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इन दोनों में क्या फर्क है और व्यक्ति को इसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है। बाकी जो मैटेरियल लाइफ है अविद्या, वो भी लोग उसको दो तरह के यूज करते हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर में डूबा रहता है वो एक टाइप के व्यक्ति होते हैं, दूसरा अपने सेंसुअल प्लेजर को कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं टू सेटिस्फाई दर ईगो। तो एक बड़ा ईगो को फ्लोरिश करता है, नॉरिश करता है, और उसके लिए जरूरत पड़े फिजिकल मेंटली वो सैक्रिफाइस करता है, और दूसरा जो फिजिकल एंजॉयमेंट को ही सब कुछ समझता है। ये दोनों कैटेगरी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे थे। और जो हमने सुना कि जो सेंसेस के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब अपने बॉडी को खुश करने के लिए, सेंसेस को एंजॉय करने के लिए पड़े रहते हैं, वो डेफिनेटली लाइट से बहुत दूर होते हैं, मिजरी में, प्रॉब्लम में फंसते हैं, दुख उनको होता है। पर जो केवल और केवल ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए पड़ा रहता है वो उससे गहरे अंधेरे में गिरता है। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया कि जो सेंसेस को सेटिस्फाई करने के पीछे पड़ा रहता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, जीव के लिए वो खाने के पीछे पड़ा रहता है। अगर सुनने की आदि है तो हमेशा कुछ ना कुछ सुनने के लिए पड़ा रहता है। तो जिसको आप कहते हैं कि लोग मैटेरियल लाइफ में बहुत एंजॉय करते हैं, प्रॉब्लम है कि उसका एक लिमिटेशन है। कोई कितना भी खाता हो, बढ़िया चीजों को पसंद करता हो, देखना चाहता हो, एंजॉय करना चाहता हो, उसका एक लिमिटेशन है। वो अगर डाउनफॉल उसका होगा भी, उसका जो कल्मिनेशन है नीचे गिरने का, अप टू एनिमलनेस, मतलब कि जानवर बन जाएगा। आप कहेंगे देखो जानवरों की तरह खाता है, पीता है, सोता है, कुछ नहीं करता है, दैट्स इट। पर जो ईगो के पीछे पड़े रहते हैं वो न केवल खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं, उनके ईगो के कारण दुनिया के बहुत सारे चीजों के नुकसान होता है। जितने बड़े बड़े वार हुए हैं वो वार इसीलिए नहीं हुए कि किसी को खाने की जरूरत थी इसीलिए वार किया, किसी को कपड़े की कमी पड़ गई थी इसलिए वार किया, नहीं, ईगो को सेटिस्फाई करना था, अपने आप को पावरफुल दिखाना था। तो जो पावर हैंकरिंग है, पोस्ट हैंकरिंग है, नीड से ज्यादा पैसे के पीछे पड़ना है, उसका पर्पस अपनी नीड को भरना नहीं, उसका पर्पस है अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। ईगो को जब सेटिस्फाई कहते हैं, दूसरों से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना। वो दूसरा, मेरे घर में मेरे स्पाउस बच्चे भी हो सकते हैं, उससे बाहर मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स के बीच में भी बड़ा बन जाऊं, अगर उससे भी थोड़ा बड़ा बन सकता हूं, मैं अपने नेबरहुड में बड़ा बन जाऊं, उससे भी ज्यादा जाऊं तो कम्युनिटी में बड़ा बन जाऊं, देश में बड़ा बन जाऊं या दुनिया में बड़ा बन जाऊं। बड़ा बनने की, दूसरों के कंपैरिजन में आप बड़ा हूं, ये जो होड़ है इसी को आप ईगो कहते हैं। इसीलिए स्टेटस की जो भूख है, स्टेटस मेंटेन करने का भूख है, वो हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई नहीं करता, आंख को ना कान को ना नाक को ना जीव को, कुछ नहीं करता। सिर्फ यही कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये जो फीलिंग लाना है यही ईगो है। और मंत्र कहता है सेंशुअल प्लेजर के पीछे पड़े रहना भी कोई अच्छी बात नहीं, जब आप पूरा का पूरा उसी के पीछे पड़े रहते हैं आप जानवर हो जाते हैं। पर अगर आप ईगो के पीछे पड़े आप उससे भी बदतर हैं, आप राक्षस कैटेगरी में आएंगे। जनरली अगर आप पुराण की कहानियां पढ़ते हैं आप देखेंगे जो एविल्स हैं, जो बुरे लोग हैं, वो जानवर नहीं है, उनको राक्षस कहा जाता है। और राक्षस कौन था? रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप, जो आप कहानियों में जितना आप पौराणिक या इंडियन माइथोलॉजिकल कहानी में सुनते हैं, वो कौन थे? वो भी सब इंसान थे, पढ़े लिखे थे। राम से रावण ज्यादा स्कॉलर था, है ना? खाली स्कॉलर नहीं, वो भी यज्ञ करता था, वेद पढ़ता था, सारे विधि विधान से पूजा पाठ करता था, वो सब कुछ करता था जो एक अच्छा इंसान को करना चाहिए। तो बुरा क्यों? ईगो है, सबसे बड़ा बनने की चाहत है, आगे बढ़ने की चाहत, दैट्स इट। वो हिरण्यकश्यप की भी वही बीमारी थी, वो भी हिरण्याक्ष की भी वही बीमारी, कंस की भी वही बीमारी। और आजकल बड़े बड़े राजा महाराजे, मतलब राजा महाराजे शब्द नहीं रहा, अब वो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जो भी बने, हेड ऑफ द स्टेट्स या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जहां भी बने, वही बीमारी है, स्टेटस को, अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाना। देवियों सज्जनों, थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जो सेंसेस की डिमांड है और जो ईगो की डिमांड है, क्यों दोनों में छोटा बड़ा का भाव रहता है। जाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जो सेंसेस के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब इंद्रियों के सुख के पीछे पड़े रहते हैं, जनरली सोसाइटी में उनको बुरे नजर से देखा जाता है, बड़ा गंदा आदमी है, बहुत जानवरों की तरह व्यवहार करता है, समाज में उसकी निंदा होती है। साइड में साइड सुनते जाइएगा। और जो इगोइस्टिक है, बाय डिफॉल्ट सोसाइटी में उसको बहुत, मोस्ट ऑफ इगोइस्टिक लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। पर मंत्र कहता है इंद्रियों के पीछे पड़ने वाला कोई अच्छा है ऐसा नहीं है, पर वो इगोइस्टिक व्यक्ति से कंपैरेटिवली बेटर है। पर सोसाइटी में उल्टा दिखता है। अब कंपेयर करते हैं, जो इंद्रियों की पूजा करता है, पूजा मतलब बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड है सेंसुअल प्लेजर में, बड़ा सेटल नहीं होता है, बड़ा ग्रास लेवल पर होता है। और डिमांड जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसको समझना मुश्किल नहीं है। एक आदमी बहुत ज्यादा जानवर की तरह व्यवहार करता है, आप उसकी साइकोलॉजी को समझने में आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा। पर आप अपने स्पाउस के साथ 50 साल रहने के बावजूद भी अभी भी कभी कभी आपको डाउट होता है ये क्या बोलना करना चाहता है या चाहती है, क्योंकि ईगो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, समझना डिफिकल्ट होता है। हम अपने बच्चों की नहीं समझ पाते हैं, वाइफ की हस्बैंड की नहीं समझ पाते हैं, दूसरों के तो छोड़िए, और 50-60 साल के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं रह जाता है, क्योंकि ईगो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। पर आप ये पकड़ लेंगे कि आपके पति को क्या पसंद है, खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, पति को पता है कि स्त्री को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को पता है पेरेंट्स को क्या पसंद है, टीवी देखना पसंद है, कोई प्रोग्राम पसंद है, पर्टिकुलर टाइप का कलर पसंद है, कपड़े पहनना पसंद है, कोई घूमना पसंद है, जो भी आपको, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इसको हमेशा खुश रखना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि खुश सिर्फ सेंसेस को खुश रखने से नहीं होता है, वहां बड़ा फैक्टर ईगो का होता है। नंबर टू, सेंसेस की जो डिमांड है, इंद्रियों का जो डिमांड है वो बड़ा लिमिटेड होता है। आप कहेंगे कि ये आदमी बहुत खाता है, कितना खाएगा, मीठा खाता है, आधा किलो खाएगा, एक किलो खाएगा, कितना खाएगा। एक किलो खाते ही तो आप उसको जानवर बोलने लग जाओगे, वो चार पांच से ज्यादा ही खा ले तो आपके घर में ही आप इसको जानवर कहोगे, जानवरों की तरह खाता है, मूवी देखता है, टीवी देखता है, कितना देखेगा, आंखों में दर्द होने लग जाता है, वैसे ही ज्यादा देख नहीं पाएगा, तब भी आप कहोगे कि निठल लेकर बैठ के टीवी देखता रहता है, दुनिया कोसोगे। जो भी इंद्रियां हमारे अंदर है फ्यू है, लिमिटेशन उसका है, आप चाहो ना चाहो अपने आप लिमिटेशन आ जाएगा। आपको मन करता है कि मैं बहुत कुछ खाऊं पीऊं, खाने पीने में गए पेट भर गया, उससे ज्यादा आपका मन है पर जा ही नहीं सकता, उसकी प्रॉब्लम है कि वो रिपीटेटिव है। आप कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं, बॉडी उससे ज्यादा और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप रुक जाते हैं, थक गए सो गए, ज्यादा खा लिया सो लिया, ज्यादा देख लिया थक गए सो गया, ज्यादा घूमा थक गए सो गए, फिर जब खाली हो जाए फिर अगेन आप डिमांड करते हैं, रिपीटेशन होता है। जानवरों को भी तो सेम चीज है ना, शेर और बाघ कितने भी वायलेंट हो शिकारियों शिकार के पीछे पड़े रहते हैं, पर कब तक, जब तक वो खा न ले। और शेर का पेट भरा पड़ा हो, उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो खरगोश या हिरण आकर उसके मुंह के पास भी चले फिरे वो रिएक्ट नहीं करने वाला, जब तक उसको दोबारा भूख न लगे वो पड़ा रहेगा, फिर भूख लगेगा, ही विल डू द सेम थिंग अगेन, रिपीटेशन होता है। पर लिमिटलेस कतई नहीं है। अब आते हैं इसके कंपैरिजन, ईगो को देखते हैं, हमारे ईगो को, ईगो इज ए लिमिटलेस। आप जब स्कूल में थे कॉलेज में थे आपको लगता था कि मैं अपना पैसा कमाऊं, इंडिपेंडेंसी होगी। शुरू शुरू में जब आप इंटर्नशिप किया या छोटा मोटा जॉब किया कुछ मिला कितने खुशी होते थे, 100, 200, 500 जो भी मिला, पहली बार जॉब लगा जो भी जॉब लगा कितना आप खुशी खुश थे, एक महीने के बाद वो खुशी खराब हो जाती है। अगला स्टेप प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो दुखी हो गया, एक दिन खुशी अगले महीने फिर दुखी, लिमिटलेस है। आप सीईओ भी बन गए कंपनी के, देखते देखते तो भी दुखी है, मुझे 8-10 कंपनियों का सारा कंपनियों का प्रेसिडेंट बनना है, वो भी आप बन गए तब भी
एंजॉय भी किया दो चार दिन, फिर दुखी हैं, प्रेसिडेंट बनना है यूएसए का, तो आप प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे तो भी दुखी मिलेंगे, पूरे पूरे प्लैनेट पर मेरी ही चलनी चाहिए, और अगर ईश्वर की कृपा से पूरे प्लैनेट पर आपकी भी चले तो भी आठ दिन के बाद आप दुखी मिलेंगे, क्योंकि पूरा यूनिवर्स मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, फिर आप गॉड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लिमिटलेस है, आप पोस्ट की, कोई पोस्ट मिल जाए आप उससे बड़े पोस्ट की खुराक में रहते हैं, नहीं मिलता मन में मन डिजायर तो चलता रहता है, पैसा मिल जाए संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए नहीं कि उससे हमें हमारी नीड की पूरी होती है, जरूरतों की पूरी होती है, नहीं, ईगो को सेटिस्फेक्शन होता है। बड़े पोस्ट पर जाने से बीमारियां कम होगी ऐसा नहीं है, हेल्थ ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा नहीं है, आप ज्यादा हेल्दी दिखेंगे नहीं, अच्छा खाना खाएंगे नहीं, अच्छा चीज करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्या हो सकता है सिवाय ईगो को सेटिस्फाई होगा, और ईगो इज लिमिटलेस। आप अगर इवन आप गॉड की जगह भी ले लें तो भी आप कहेंगे कोई सुपर गॉड होता है क्या, तो वहां भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वो इनसेसिबल है। आप किसी भी तरीके से ईगो को, अपने ईगो की जो डिजायर है उसे आप खुश कर ही नहीं सकते, सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, और जिन्होंने ईगो पर कंट्रोल किया वो जहां भी है वहां भी खुश मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जिनके पास नीड की जरूरत की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सामान होने पर वो खुश होते, अगर नीड को पूरा करना ही खुशी होता तो गरीब लोग सबसे ज्यादा दुखी होते, जिनके पास धन है दुखी होते, जो इलिटरेट है वो दुखी होते, जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो सुखी होते, जो पावरलेस हैं वो दुखी होते, जो पावरफुल है वो सुखी होते, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं दिखता। पावरलेस व्यक्ति भी, इलिटरेट व्यक्ति भी, नीडी व्यक्ति भी कंपैरेटिवली उतने ही खुशी या दुखी रहता है जितना कोई धनी ज्ञानी पावरफुल व्यक्ति होता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि पोस्ट पावर नॉलेज या मनी इससे एक सर्टन लेवल के बाद जब हम आगे जाते हैं नीड के आगे, वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, डेफिनेटली ईगो को सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता, इसलिए मोस्ट ऑफ नॉलेजेबल लोग पावरफुल लोग दुखी मिलेंगे आपको। अब ग्लैमर वर्ल्ड में देखिए, ग्लैमर वर्ल्ड का मतलब जो लोग मूवी में मीडिया में फैशन वर्ल्ड में काम करते हैं, मोर देन 70% लोग जो ग्लैमर वर्ल्ड में काम करते हैं वो ड्रग लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वो डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? इतना पैसा उनके पास है, इतने लोग उनको पसंद करते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके फोटो खींचने के लिए दीवाने होते हैं, फिर वो दुखी किस बात के लिए? क्या कमी है? दुनिया का सबसे बड़ा घर उन्हीं के पास होता है, पैसा उन्हीं के पास होता है, फॉलोअर्स उन्हीं के पास होते हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड लिमिटलेस है। इसीलिए ईगो और सेंस के पीछे, सेंसेस के पूजा करने वाले, उपासना करने वालों के कंपैरिजन ईगो की पूजा करने वाला हमेशा ज्यादा दुखी रहता है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो ईगो वर्शिपर्स होते हैं, मतलब जो ईगो की पूजा या केयर करते हैं, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं सेंसेस को खुश करने के कंपैरिजन, जरूरत पड़ने पर नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम ईगो वर्शिपर्स सैक्रिफाइस देम्स, वो अपने बॉडी माइंड की नीड को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं और करते हैं, सेंसुअल डिमांड को भी वो सैक्रिफाइस करते हैं। जब भी आप सुपर एम्बिशियस होते हो,
ये नहीं पूछना है कि भाई एम्बिशियस होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, वो तो अलग दूसरी बात है। कोई भी चीज बुरा या अच्छा नहीं होता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे ही आप सुपर एम्बिशियस होने लगते हो तो आप सैक्रिफाइस करने लगते हो, आप अपने फैमिली को नेचुरली कम टाइम देते हो, आप अपने आप को कम टाइम देते हो, अपने हेल्थ को कम टाइम देते हो, अपने खाने पीने को कम टाइम देते हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपका गोल है सुपर सक्सेस होना है। जहां 8-10 घंटे काम करना पार्ट ऑफ नेचर ठीक है, जब आप 17-18 घंटे मेहनत करते हैं, आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं, माइंड को एग्जॉस्ट करते हैं, खाने पीने के साथ कंपेयर करते हैं, नेचुरली सेंशुअल एंजॉयमेंट उनके लिए सेकेंडरी होता है, और यहीं से सोसाइटी उनको पूजने लगता है, रिस्पेक्ट देने लग जाता है। मजेदार बात है कि ईगो दो तरह की चलती है। पहले वाली हम सबको पता होता है, ये बड़ा एरोगेंट है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, ये बड़ा एरोगेंट है क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल है, ये बड़ा एरोगेंट है इसके पास बहुत पावर है। समझ में आता है कि समवन हाव समथिंग सो वो उसके लिए बड़ा इगोइस्टिक है, और ये हम सब जानते हैं, बोलते भी हैं कि भाई ये इसमें बड़ा ईगो है क्योंकि इसके पास ये है, सुंदर दिखने में है तो इसको अपना ईगो है, अच्छे कपड़े पहनता है उसके अपना ईगो है, बॉडी फिट है उसको अपना ईगो है। ठीक है, जो चीजें जनरली बहुत कम लोग नोट कर पाते हैं, जो ईगो का शटल लेवल है, कि ना होने का ईगो, मेरे पास नहीं है इसका ईगो। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, मिडिल एज के मिडिल पोस्ट, मिडिल लेवल के पोस्ट में, ना बहुत बड़ा पोस्ट था ना छोटे पोस्ट, एक ही कॉलोनी में कम्युनिटी में रहते थे, एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों के पास एक जैसा घर था, गाड़ी थे, पत्नियां भी दोनों के एक टाइप के ही थे, सुंदर थे, सब अच्छे थे, बच्चे भी ठीक थे, मतलब कंपेरिजन होता था, पर बहुत ज्यादा बारीकी ढूंढने के लिए कुछ था नहीं। इनके घर में वही चीजें था, इनके घर में भी वही चीजें था, ग्रेजुअली एक जना बढ़ता गया, मैं भी वो करप्ट हुआ, जो भी हुआ ब्राइब लिया, मैं एक भारत की एग्जांपल देता हूं, तो बहुत आगे बढ़ गया या बहुत मेहनत किया, हार्डवर्क किया, प्रमोशन होता गया, 8-10 साल के बाद वो बहुत ऊंचा पहुंच गया, उसी कम्युनिटी में उसका बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, घर में बहुत सारे नौकर चाकर है, उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कंपेरिजन इम्पॉसिबल हो गया, अंदर जलन के अलावा और कुछ बचा नहीं है। सारी कोशिश कर ली कि उसके बराबर हो जाए, नहीं हुआ। सडनली एक बड़ा सुंदर आइडिया आया, अगले दिन सुबह साहब ने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, कपड़े छोड़ दिए, सिंपल एक मतलब जो रेगुलर कपड़े छोड़ के धोती पहनने लगे, भगवा पहनने लगे, जूता चप्पल छोड़ दिया जी, खाली पैर चलने लगा, बाल काटना छोड़ दिया, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ाने लग गए, बॉडी को खूबसूरत करना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, संसार माया है, कुछ नहीं रखा है, सब छोड़ दिया मैंने। देवियों सज्जनों, एक साल के बाद, दो साल, एक साल, जितने भी 3-4 साल के बाद, आज इस व्यक्ति के पीछे लाखों लोग हैं, पैरों में गिरते हैं, त्यागी जी महाराज हैं, है जी, अब बिल्डिंग उससे भी बड़ा है, नाम बदल गया, वो घर था या आश्रम हो गया, कपड़े बदल गए, जूता नहीं पहनते, खाली पैर चलते हैं, उसके पीछे 100, 200, 500 लोग चलते थे, आज मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं, एक भी घर नहीं, मेरे पीछे 5,000 लोग चलते हैं। हिसाब बराबर नहीं, ज्यादा हो गया। ईगो इज नाउ सेटिस्फाइड। बस समझ में आई?
होने का गर्व तो सबको पता होता है। बहुत लोग जब होने से कंपीट नहीं कर सकते तो वो ना होने की गर्व पालने की कोशिश करते हैं।
ऐसे लोगों को सेल्फ डिनाइंग पीपल।
आप अपनी सुखों को बलि चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले। मैं तुमसे धन से बड़ा हूं, ज्ञान से बड़ा हूं, पावर से बड़ा हूं, ओके ठीक है।
तुमने अगले दिन सब छोड़ दिया, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, मैं तो जी मच्छर से भी छोटा आदमी हूं। वो ठीक है, वो बड़ा आदमी है, मैं तो धूल का बराबर हूं। अब मैं धूल के बराबर हूं, पर यकीन मानिए उससे नीचे मत बताना भी और भी कोई है। यार मुझे सबसे नीचे रहने दो, वो सबसे ऊपर है फाइन, पर सबसे नीचे मैं आ गया ना।
पर कल आप कहोगे तुमसे भी कोई छोटा आदमी है,
फिर ईगो को हट होगा। आपके आस दोस्तों के बीच में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत जरूरत से ज्यादा हम्बल दिखेंगे। कैसे हैं? सब आपकी कृपा है, बड़ा अच्छा घर है। कहां जी, कुटिया है, बस रह जाते हैं, सब आपकी मेहरबानी है। आप अंदर अंदर सोच रहे होंगे भाई मेरी मेहरबानी कब हुई, बोलूं फिर आधा घंटा फिर बहस करेगा। तो आप बोलते नहीं है, मतलब जब भी आपको कोई बोलता है आपकी कृपा से मेरा सब अच्छा है, थोड़ी आप बोलते नहीं मेरी कृपा नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे वो 4 लाइन और सुनाएगा तो फिर आप चुप हो जाते हैं। चलो ठीक है भाई, पर मन ही मन तो सोचते हैं ना जी आप बड़े अच्छे आदमी। अरे कहां जी, सारी बुराइयां मेरे में ही है, कोशिश करता हूं। मतलब आप भलाई की गर्व लेते रहो, मैं बुराई कर लूंगा भाई, मेरे में सब बुराई है। तब कहोगे देखो कितना अच्छा आदमी है बेचारा, वो अपने आप को बुरा कहने को तैयार बैठा है। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में रिनुंसिएशन को, त्याग को बड़ा माना जाता है। वो भी एक कारण बन जाए, ये बड़ा शटल लेवल ऑफ ईगो है। ये बहुत मुश्किल होता है इसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि ये ईगो सिर्फ फ्रंट डोर से नहीं आता है, ये बैक डोर से भी आता है, छोटे डोर से भी आता है। तो छोड़ने का भी अपना ईगो होता है। इसीलिए एवरीवन हैज टू सर्च विद इन हिमसेल्फ। एक छोटी सी चीज लेकर जा सकते हैं। बॉडी या माइंड की, बॉडी या सेंसेस की जो जरूरत है वो लिमिटेड है। अगर अंदर बेचैनी होने लगे, एंजाइटी आने लगे, तो समझ लीजिए कि इट्स बियॉन्ड द नीड्स ऑफ आवर टाइम। तो जितना ज्यादा, जैसे ही हम अपने बेसिक नीड से ऊपर उठने लगते तो उतना स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ता है। देवियों सज्जनों, आप किसी जानवर को स्ट्रेस में देखोगे अगर जंगल में हो, अगर नेचुरली अगर आप जेल में रखते हो, उसको किसी बांध के रखते हो, वो दुखी मिलेगा। जंगल में रहने वाले जानवर मोस्टली खुश रहते हैं। आप किसी ट्राइबल सेक्ट एरिया में जाइए, जो जंगल में रहते हैं ट्राइबल्स लोग, बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घास फूस की कुटिया है, जंगलों में बनने वाले चीजों से पेट पालते हैं, उनकी कल्चर देखिए, उनके नाच गाना देखिए, आप देखेंगे होल डे वो एंजॉय करते हैं। एक मजदूर काम पर जाता है, 7-8 घंटे मेहनत करके रात को आता है झोपड़ी में, वो शहरों से गांवों से बहुत सारे लोग शहर की ओर भागते हैं मजदूरी करने के लिए, यहां भी बहुत मिलते हैं। तो स्लम में जहां जगह मिला तो वहां एक टेंट लगा दिया, पॉलीथिन डाल दिया या प्लास्टिक का कुछ डाल दिया और उसी के अंदर रहने लगते हैं। दो चार लड़के एक साथ रहने लगते हैं, मजदूरी करते हैं।
गाड़ी में जाने वाला लोग देख कर लगता होगा क्या कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर जिंदगी है,
खाने का ठिकाना देखो धूल से भरे हुए लोग हैं, 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, कंट्रैक्टर की गालियां सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, काम करते हैं, शाम को आते हैं जो भी पैसा मिला बाजार से, क्योंकि कुछ बचता तो है नहीं, उसी रात के लिए जितना चावल आटा दाल तेल चाहिए, 10 ग्राम तेल 500 ग्राम आटा लेकर आते हैं, घर में छोटा रेडियो आप गुजरते होंगे तो वो टेंट में से, इस्लाम की टेंट में से एफएम की गाना सुनने को मिलेगा, एफएम की गाना चल रहे हैं, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, ताश खेल रहे हैं, खाए पिए ताश खेला चाय एफएम सुना सो गए। और वो कॉन्ट्रैक्टर जो करोड़ों कमाता है, बॉस बना है, उसके घर जाओ, घर जाने के बाद मियां बीवी की लड़ाई चल रही होगी, बच्चे पूछ नहीं रहे होंगे, रात को स्लीपिंग पिल खा के सोता होगा, जरूरी नहीं सब करते हैं, करता होगा, बहुत सारे करते हैं।
जब आपकी सेंसेस की नीड्स पूरा हो जाते हैं ना, जो उसी में रहता है, जनरली उनमें एंग्जाइटी कम होता है, उनके स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, तो प्राचीन काल में ये रॉयल राजाओं को होता था। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों का क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे आजकल सोशलिस्ट मूवमेंट चलता है ना, समाजवाद, तो रोगों का भी एक सोशलिस्ट फिलॉसफी है, मतलब कुछ रोग सिर्फ बड़े लोगों को होते हैं, कुछ लोग सिर्फ गरीब लोगों को होते हैं, कुछ लोग ये मिडिल वालों को, दोनों तरह का रोग होता है जी, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे मुश्किल यही बीच वाले होते हैं, इनके पैसे भी है, पोस्ट भी है, थोड़ा बड़ा है, तो उसी कारण स्ट्रेस भी रहता है, बहुत कम वालों की तरह स्ट्रेस फ्री भी नहीं हो सकते, दुख भी है क्योंकि इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि बाकी लोगों की तरह हो, तो बीमारी भी इनकी दोनों तरह की होती है। और आजकल तो घर घर में ये राज रोग, रॉयल डिजीज, कौन कौन से होते हैं, डायबिटीज, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम, खाते पीते लोगों का लक्षण होता है ये। गरीबों की अपनी बीमारी है, माल न्यूट्रिशन की, हजारों विटामिन्स कम होंगे, आयरन कम है, होमोग्लोबिन ये कम है, ब्लड में ये कम है, उनकी अपनी बीमारियां, हजारों बीमारियां गरीबों की है। अरे जो बीच में है, ये दोनों तरह की बीमारियां पालते हैं। क्यों? ये जो रॉयल डिजीज जिसको कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों? ईगो, फिर ईगो के कारण ये पैदा होता है। तो जैसे ही हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो, तो हम अपने एंग्जाइटी को भी, स्ट्रेस को भी कम लेवल पर ला सकते हैं। नंबर दूसरी बात है, जो भी ईगो के वर्शिपर होते हैं, मतलब ईगो को ही सेटिस्फाई करने के पीछे पड़े रहते हैं, उनका लाइफ बड़ा सुपरफिशियल होता है, मोस्टली आर्टिफिशियल लाइफ होता है। और जो बहुत ज्यादा नियर टू क्लोज टू नेचर होता है, बड़े नॉर्मल होते हैं, जेन्यून होते हैं, रिलेशनशिप में भी बड़ा जेन्यूनिटी दिखेगी। जैसे ही आप ईगोसेंट्रिक होंगे, आपकी फ्रेंडशिप भी बड़ा सुपरफिशियल होगा, आपकी हंसी में भी वो आर्टिफिशियलिटी दिखेगी, आपकी पार्टी में भी जो आने वाले लोग हैं उनके बीच की आप नोट करेंगे, उसमें भी सुपरफिशियलनेस ज्यादा मिलेगा, देख करके तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा ड्रेस पहने हो, कहां से लिया, अच्छा इंडिया से, कौन से ब्रांड का है, अच्छा ये ब्रांड का, बहुत अच्छा, आपको खुश हुआ, चलो किसी की आंख में तो जलन पैदा हुआ, मैंने एक महंगे कपड़े पहना, चलो। पर यकीन मानिए, जैसे ही आपसे हटेगी या हटेगा, पीछे जा करके दूसरे शैलियों से बात कर रही होंगी, वो बुराई कर रही होगी, पता नहीं। बड़ा सुपरफिशियल जो होता है उसमें हिपोक्रेसी बहुत होती है। पर अगर आप बड़े जेन्युइन हैं, आपकी सर्कल भी जेन्युइन होगा, आपकी पार्टी में भी वो जेन्युइनिटी दिखेगी। आपको बुरा लगता है तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, बड़ा ठीक इट फॉर ग्रांटेड होता है। सब मिलजुल के होते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं, सब चलता है। देवियों सज्जनों, जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस इंस्टीट्यूशन में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ मुस्कुराकर चल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग बिहाइंड इट। अगर वहां अप्स एंड डाउन्स है, इट्स वेरी नेचुरल, इट विल फ्लो नेचुरली। प्यार भी है, गुस्सा भी है, तकरार भी है, मिलावट भी है, गले मिलना भी है, गले बिछुड़ना भी है। हस्बैंड वाइफ की बड़े जोक्स होते हैं, मतलब कोई भी वो भारत में जनरली, मतलब दो एक आदमी और एक महिला दोनों अगर बाजार में लड़ रहे हो, लोगों को शक होगा कहीं हस्बैंड वाइफ तो नहीं है ये। और अगर नहीं लड़ रहे, चुपचाप जा रहे, बड़े शांति से जा रहे, तो हस्बैंड वाइफ हो तो भी लोगों को लगेगा कोई दूसरी रिलेशनशिप है। बड़ा नेचुरल है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ होकर के आर्टिफिशियली रह नहीं सकते। शादी से पहले थोड़ा ड्रामा किया होगा, एक्स्ट्रा दिखाया होगा, शादी के बाद भी एक दो साल तक थोड़ा कुछ ड्रामा किया होगा, फिर तो आपको नॉर्मल होना ही पड़ेगा। जैसे ही आप नॉर्मल होंगे तो खटपट तो लगा रहेगा। खटपट इज वेरी मच पार्ट ऑफ ए गुड रिलेशनशिप। ईगो में सुपरफिशियलिटी ज्यादा होती है। थोड़ी बात आगे और करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले बार भी जरूर आइएगा। इसी बात के साथ यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।